ओम शांति। हम सभी के मध्य उरई से मीना बहन क्लास कराने के लिए उपस्थित हुई हैं। हम सभी करतल ध्वनि से उनका अभिवादन करेंगे। मीना बहन पिछले 30 वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रही हैं और लगभग 28 वर्षों से समर्पित रूप से इस महायज्ञ में अपनी सेवाएं दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर आपने अपनी सेवाएं दी। वर्तमान समय उरई सेवा केंद्र का संचालन कर रही हैं। जैसा कि आप सबने नाम सुना, यथा नाम तथा गुण है। जैसे कोई स्वर्ण आभूषण बनाया जाता है तो उसकी शोभा बढ़ाने के लिए उसमें मीना जल दिया जाता है, ऐसे ही जब मीना बहन क्लास कराती हैं तो पुरुषार्थ के लिए सहज टिप्स बताती हैं, जिससे हमारा पुरुषार्थी जीवन जो है तीव्र गति ले लेता है और हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ने लगता है। आज आप सबको भी सहज और सरल युक्तियां बताएंगी पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए मीना बहन जी।
ओम शांति। और जोर से बोलेंगे ओम शांति। अभी अभी बाबा का गीत सुन रहे थे तो हमें बाबा क्या बनाना चाहते हैं, इस गीत के माध्यम से आपने सुना होगा कि बाबा हमें ज्ञान रत्नों से सजाकर, सुंदर सुंदर गहने पहनाकर और तारों से भी पार ले जाना चाहते हैं। तो जो बाबा की आश है तो उस आश को कौन पूरा करेगा, कौन पूरा करेगा? हम बाबा के बच्चे ही तो पूरा करेंगे ना उस आश को, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को सजाया ही इसीलिए है, क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी है और त्रिकालदर्शी होने के कारण से बाबा ने एक एक रत्नों को सारी दुनिया से दूर करके, एक एक रत्नों को निकाल करके सो केश में सो पीस बना करके रखा है। तो हम ब्राह्मण बच्चे बाबा की आशा को पूर्ण कैसे करें? पूर्ण तो करना है, क्योंकि बाबा से हर एक ने वायदा किया है ना। क्या है हर एक ने क्या कहा है? बाबा हम आपके अरमान पूरे करेंगे। तो अरमान पूरे कैसे होंगे? जब भगवान के फरमान को जीवन में धारण करेंगे। तो भगवान का फरमान क्या है? भगवान का फरमान है कि जैसे मैं आत्मा इस सृष्टि के अंदर आई थी वैसे ही मुझे वापस जाना भी है। कहाँ जाना है? अपने घर। तो मैं आत्मा कैसे आई थी? मैं आत्मा एकदम सतोप्रधान, और सतोप्रधान किसको कहते हैं? सतो गुण से सजी हुई आत्मा, सतोप्रधान। तो सतो गुण क्या है? सतो गुण प्रेम, शांति, आनंद, सुख, पवित्रता, शक्ति, प्रकाश, ज्ञान। ये 7 गुणों से सजी हुई आत्मा सतोगुणी, सतोप्रधान में आत्मा इस सृष्टि पर आई थी, और अब मुझे वापस घर जाना है। जाना है, आता है मन के अंदर कि अब घर जाना है, कि ये दुनिया अच्छी लगती है? ये पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या? नहीं अच्छी लगती, अच्छी नहीं लगती। लेकिन फिर भी हम कई चीजें पुरानी दुनिया के यूज करते रहते हैं, कई चीजें यूज करते रहते हैं। तो जब अच्छी नहीं लगती तो हम यूज भी नहीं करते। कोई भी चीज है जब हमको अच्छी नहीं लगती तो उसको हम यूज करते हैं, यूज नहीं करते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? जो चीज अच्छी लगती है उसी को ही हम यूज करते हैं। तो अभी हमको वापस घर जाना है, तो इसलिए इस पुरानी दुनिया की जो भी रीत रिवाज लोक लाज स्वभाव संस्कार ये जो भी कुछ चीजें हैं, तो हम इसको यूज कर लेते हैं ना, कर लेते हैं ना, अच्छा ना लगने के बाद भी हम उसको यूज कर लेते हैं, तो यही हमारे अंदर विस्मृति हो जाती है। क्योंकि सारा खेल संसार का स्मृति और विस्मृति पर डिपेंड करता है। तो जितना समय हमें बाबा की स्मृति रहती है, ज्ञान की स्मृति रहती है, तो हमारी स्थिति भी सतोप्रधान रहती है। और जहां वो विस्मृति हो जाती है तो हमारी स्थिति भी क्या हो जाती, तमो प्रधान बन जाती है। तो ये अप डाउन स्थिति क्यों करती रहती है, ये अप डाउन स्थिति करती ही इसलिए है कि हम स्मृति और विस्मृति के चक्र में आ जाते हैं। अब हर समय हमें उसकी स्मृति कैसे बनी रहे, बाबा की घर की ये स्मृति हमको कैसे बनी रहे, क्योंकि गीता में भी भगवान ने कहा ना कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा क्या है कि जितना जितना हम संसार से देह के वस्तुओं से व्यक्तियों से जितना हम न्यारा रहते हैं, जितना हम अटैचमेंट में रहते हैं उतना ही फंसे रहते हैं। जैसे देखो ये हाथ है ना, तो ये हाथ फ्री है तो हम कोई भी काम कर सकते हैं, कुछ भी वर्क कर सकते हैं, सारी उंगली फ्री है तो कुछ भी लड्डू भी बना सकते हैं और भी काम कर सकते हैं, सारा काम करते हैं, क्योंकि यह सारी उंगली क्या है, फ्री है। अगर ये उंगली हमारी सारी चिपक जाए, सारी उंगली चिपक जाए तो क्या होगा, काम होगा, कोई काम कर पाएंगे और ही बल्कि डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या बोलेंगे, डॉक्टर साहब ये हमारी सारी उंगली चिपक गई है तो इसको आप क्या करो, अलग अलग कर दो, पैसा भी खर्च करेंगे और कहेंगे इसको अलग अलग कर दो क्योंकि सारी उंगली क्या है, चिपक गई है। तो जैसे उंगली चिपकी हुई है तो हम कोई काम वर्क नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हमारी बुद्धि देह और देह के संबंधों में अटकी हुई है, चिपकी हुई है, फंसी हुई है, तो हम कोई भी फ्री होकर के कोई भी ईश्वरीय कार्य, कोई भी अच्छे कार्य को हम नहीं कर सकते। और जब नहीं कर सकते तो वो स्मृति में आएगा, क्योंकि कर्म करने से ही स्मृति में आता है। और हम कर्म करते नहीं, फंसे हुए हैं, तो जब हम बार बार कोई भी कर्म जब हम बार बार करते हैं तो बार बार करने से ही वो हमारी स्मृति में आ जाता है, है ना। और जैसे कोई भी टॉपिक है जब उसको याद करते तो याद कर बार बार याद करने से क्या होता है, वो हमारी स्मृति में आ जाता है, ठीक है। और जो चीज स्मृति में आ जाती वो हमारी स्थिति बनना शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही हम बाबा के कार्य को जब हम बार बार, श्रेष्ठ कार्य कोई भी प्रकार का कार्य हमको मिलता है और उसको जब हम बार बार दिन में करते हैं तो वो हमारी स्मृति में चला जाता है। और वो स्मृति में जाने के कारण से फिर हमारी वो स्थिति भी धीरे धीरे क्या बनने लगती है, सतोप्रधान बनने लगती। तो इसके लिए बाबा ने कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जब स्मृति में कोई चीज आ जाती है, हमारी स्थिति बन जाती है, तो फिर हमारी प्रालब्ध बन जाती है, भविष्य, प्रालब्ध भविष्य हमारा बन जाता है। तो हमें बाबा के आश को पूर्ण करने के लिए बार बार श्रेष्ठ कर्म करना, और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हमें कर्मों की गहन गति को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग कर्मों की गहन गति को कभी कभी हम भूल जाते हैं। अब ये कर्मों की गहन गति क्या होती है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 100 गुण है, हाँ, और 100 गुण में आपको 5 गुण और मिल जाते हैं, उसको आप प्लस कर लीजिए, 5 गुणों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाता है, 105 हो जाता है, ठीक है। तो 1-5 कैसे आपने ऐड कर लिया, अगर आपने किसी के प्रति अच्छा सोचा तो आपने 5 नंबर ऐड कर लिए उसमें, हाँ, प्लस कर लिया तो कितना हो गया, 105 हो गया, ठीक। अगर हमने किसी के प्रति अच्छा सोचा भी और अच्छा कर भी दिया तो आप 5 का
100 में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 500। अच्छा सोचा केवल आपने तो वो 105 हो गया, और आपने अच्छा कर भी दिया तो वो जाकर कितना हो गया 500 हो गया। इसी तरह से अगर हमने किसी के प्रति गलत सोचा, आप 5 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 95 रह जाएगा। और अगर हमने किसी के प्रति गलत सोचा भी और गलत कर भी दिया तो उसको आप भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 20 बचेगा। तो जब हमने गलत सोचा तो 95 रह गया, और जब हमने गलत कर दिया तो वो हमारे पास 20 रह गया। तो ये हमारी लाइफ कहां चली गई, माइनस। भले हम ब्राह्मण जीवन में हैं, बाबा ने हमें अपना बच्चा बनाया है, और हम भी बाबा से कहते बाबा मैं आपका बच्चा हूं, गारंटी से कहते हैं। सभी कहते ना कि हम बाबा के बच्चे हैं, सभी कहते हैं, कौन नहीं कहते, सब कहते हैं, किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो सब क्या कहते हैं कि हम बाबा के बच्चे हैं, ठीक है। तो जब हम बाबा के बच्चे बन गए या हैं, तो फिर हमारी लाइफ माइनस में जाती रहती है। तो ये माइनस में क्यों चली जाती है, अच्छी जीवन पा करके भी, बाबा का संग पा करके, बाबा को साथी बना करके भी हम इस कर्मों की गणित को नहीं समझ पाते हैं, इसको हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो उसको यूज ना करने के कारण से जो हमारा पुरुषार्थ आगे की ओर बढ़ना था वो आगे ना बढ़ करके या तो ठहर जाता है, हाँ, या फिर धीमी गति में चलता है, हाँ। तो हमें अपने पुरुषार्थ को ना तो ठहरने देना है और ना इसको धीमी गति में चलाना है, क्योंकि अभी समय नहीं है। अभी ऐसा समय है कि हम धीमे गति से चलते रहे या हमारा पुरुषार्थ ठहर जाए। तो इस बात पे हमको विशेष अटेंशन देना है कि हमें प्रोग्रेस करनी है, हमें अपनी लाइफ को प्लस में लेकर चलना है, माइनस में नहीं। तो ये सबसे बड़ी कमी आ जाती है ब्राह्मण जीवन के अंदर, कि जैसे हम शुरू शुरू में ज्ञान में चलते हैं तो बड़ा उमंग रहता है, बड़ी खुशी रहती है, बड़ा उड़ते रहते, दौड़ते रहते, बड़े खुश रहते हैं। और जैसे जैसे ज्ञान में चलते चलते धीरे 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 जब पुराने होने लग जाते हैं, तो पुराने होने के कारण से क्या होता है, कईयों का अनुभव ही होगा, अधिकतर हमको यही लोग आकर बोलते, पहले मेरी अवस्था बहुत अच्छी थी लेकिन अभी पता नहीं क्यों क्या हो गया है कि जो पहले अवस्था थी ना, तो वो अवस्था अभी नहीं रह गई। उसका कारण समझ गए, वो अवस्था अभी मेरी क्यों नहीं रह गई, जो शुरुआत में अवस्था थी जबकि हम ज्ञान नहीं समझते थे, इतना बाबा से योग भी नहीं था, इतना बाबा से हमने रतन भी नहीं लिया होता है, केवल हमने कोर्स किया होता है और नए नए हम चल लेते हैं, नियम संयम को अपनाना शुरू करते ही है। तो उस समय हमारी अवस्था इतनी अच्छी रहती है, इतनी अच्छी रहती है कि हम सेवा में भी टाइम देते हैं, तन भी लगाते हैं, मन भी लगाते, धन भी लगाते, समय भी लगाते, बहुत कुछ लगाते। लेकिन जब धीरे धीरे जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जैसे ही पुराने होने लग जाते हैं, तो हमारी अवस्था आगे बढ़ने की जगह पर ये डाउन क्यों हो जाती है, उसका कारण जान गए। उसका कारण यही है कि हमारी सोच में परिवर्तन नहीं होता है, और सोच में परिवर्तन शुरुआत में जो होती है वो टेम्परेरी होती है केवल, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे जो 63 जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, तो 63 जन्म के संस्कार होने के कारण से वो सारे संस्कार भी धीरे धीरे पुराने होते हैं ना, तो वो पुराने स्वभाव संस्कार भी क्या लेते हैं, टक्कर लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस पर हमारा इतना अटेंशन नहीं जाता, कर्मों की गहन गति पर हमारा अटेंशन नहीं जाता। और अटेंशन ना होने कारण से जो दुआएं हमको मिलनी चाहिए थी, क्योंकि आगे बढ़ने का रास्ता केवल एक दुआएं हैं। बाबा ने कहा है कि अगर कोई आपको पुरुषार्थ करना नहीं आता है तो भले मत करो, दुआएं केवल अपने जीवन के अंदर कमाना शुरू कर दो। योग भी इतना नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहीं कईयों को आता ना, मेरा योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। केवल एक पॉइंट हम केवल धारण कर ले कि हमें अपने कर्मों की गहन गति में हमें प्लस में जाना है, अच्छा सोचना है और अच्छा करना है, तो ये प्लस हम आगे बढ़ जाएंगे। और अगर इसमें जरा भी कमी आती है तो कमी आने के कारण से वो ब्राह्मण जीवन जो मौजों का जीवन है ना, हाँ, जो अतिंद्री सुख का जीवन है, तो मौजों के जीवन के बदले हमारी जीवन मूझने वाली बन जाती है। मौज वाली जीवन नहीं रह पाती है, फिर क्या आ जाती है, मूझने वाली। और मूझने वाली जो लाइफ होती है तो उसको तो आप जान सकते हैं ना, वो सुख प्रदान करती है, अतिंद्रिय सुख का अनुभव कराएगी ना, तो अतिंद्रिय सुख का अनुभव कराएगी ना ब्राह्मण जीवन का सुख, क्योंकि ब्राह्मण जीवन एक ब्रह्मावत्स जीवन है। ब्राह्मण जीवन ब्रह्मावत्स जीवन, तो ब्रह्मा के हम बच्चे हैं, तो ब्रह्मा के आचरण को जीवन में उतारना माना ब्राह्मण। तो ये जो हमारा लक्ष्य है, बाप समान बनना, तो बाप समान बनने के लिए बाबा ने हम बच्चों के प्रति कितना सोचा शुरुआत से। बाबा का हम लोग की जो रचना हुई है तो वो साकार बाबा से तो नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों की रचना संकल्पों से हुई है। ये जो कहावत है ना कि ब्रह्मा ने सृष्टि जो रची थी वो संकल्पों से रची थी, तो हम बाबा के बच्चे कौन सी रचना है, संकल्पों की रचना। और संकल्प कितने पावरफुल होते हैं, होते हैं, तो संकल्प कितने पावरफुल होते हैं, तो ब्रह्मा बाबा के संकल्प भी कितने पावरफुल थे, उस पावरफुल संकल्प की हम सब पावरफुल रचनाएं, पावरफुल रचना। लेकिन हम रचना अपनी उस तरफ बुद्धि ना लगा करके हम कहां चले जाते हैं, जो सीधा रास्ता बाबा ने दिया है उस सीधे रास्ते से ना जा करके हम गलियों में घुस जाते हैं। गलियां क्या है, कई प्रकार की गलियां हैं जिन गलियों का रास्ता ही नहीं होता। कभी कभी ऐसी गलियां होती है जिनमें कोई रास्ता नहीं होता है, उधर केवल घूमते रहो, हाँ, भूल भुलैया जैसी स्थिति बन जाती है, उसका कोई रास्ता नहीं होता है। तो ये भूल भुलैया क्या है, ये मान, ये शान। सबसे बड़ी बीमारी क्या लगती है, जब पुराने होने लग जाते हैं तो सबसे बड़ी बीमारी क्या लग जाती है, मान शान अभिमान, ये बीमारी लग जाती है। क्योंकि जब हम सेवा करना शुरू करते हैं, पुराने होते हैं सेवा करते हैं, तो सेवा करने में भी ये मूझना क्यों शुरू हो जाता है, ये मूझना शुरू इसीलिए होता है कि जो हम हद की इच्छाएं रखते हैं वो हद की इच्छा जब हमारी पूरी नहीं होती है तो वहां पर मूझना शुरू हो जाता है। और हद की इच्छा में ही ये सबसे बड़ी बात आती है, मान शान। ये मान शान का जन्म क्यों हो जाता है, जबकि कहा यह जाता है कि नेकी कर दरिया में डाल, तो हम नेकी कर दरिया में नहीं डाल पाते हैं। और क्या चाहते, ओपन हो जाना चाहिए, जो भी कुछ मैं कर रहा हूं, जो भी तन से सेवा करता हूं या मन से करती हूं या धन से करती हूं या मैं इतना समय लगाती हूं, तो ये सारा सबको पता होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। तो वो अंदर में ऊपर से यही बोलेंगे, नहीं नहीं हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि बाबा का कार्य हो गया हो गया, लेकिन अंदर में सूक्ष्म रूप में जो ये इच्छा बनी रहती है, हद की इच्छा बनी होती है अंदर में कि मेरा मान होना चाहिए, हाँ, मेरे को भी चार लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ मेरा भी सम्मान होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो मन के अंदर हो जाती है, ये ओपन बीज, इसको कहते हैं ओपन बीज। जैसे खेती होती है ना, तो खेती में अगर ओपन बीज डाला जाए तो कभी अंकुरित होगा, कभी अंकुरित होगा, वो कभी अंकुरित नहीं हो सकता है, बल्कि ये चिड़िया आएगी और उसको खा करके चली जाती है। आज दुनिया में भी यही बीमारी लगी हुई ओपन। आज मंदिर जेके का मंदिर बनाया, उसमें भले लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, लेकिन उस लक्ष्मी नारायण के मंदिर को ना लिख करके क्या लिख दिया, जेके का टेम्पल, ओपन बेज। मंदिर में सीढ़ी लगाते हैं ना, तो सीढ़ी में भी नाम खुदवा देते हैं, ओपन बेज। तो यही बीमारी, ये संस्कार हमारे ब्राह्मण जीवन के अंदर भी ये संस्कार डेवलप हो जाता है कि सबको मालूम होना चाहिए कि मैं इतनी सेवा करता हूं। तो ओपन बीज, और जिस बीज में मिट्टी पड़ जाती है वह बीज अंकुरित हो जाता है, और जो बीज ओपन है वो अंकुरित ही नहीं होता। तो बाबा के घर में भी जितना जितना हम ओपन होकर के कार्य करते हैं, तो ओपन होने के कारण से बाबा के घर में रजिस्टर में जमा तो होता ही नहीं, होता है जमा तो होगा ही नहीं। और जब जमा ही नहीं हुआ तो खुशी मिलेगी, लॉस। आप बैंक में गए, आपने वहां पर खोला खाता, पैसा जमा किया, रिकॉर्ड में गया ही नहीं, आपको कैसा लगेगा? आपका रिकॉर्ड में गया ही नहीं, आपने बैंक में डाला, खाता खोला, बैंक में डाला भी आपने, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था आपका। तो जब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ और आपको जब ये बात पता चली कि हमारा तो वहां कोई खाता ही नहीं, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो आपको कैसा फील होगा? खुशी मिलेगी? खुशी नहीं मिलेगी। अंदर से हमको अंदर से क्या आएगा, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ आएगा ना। तो हम उसको देखेंगे कि कहां से तो क्या हमको खुशी मिलेगी? तो क्या खुशी आनी चाहिए, जो उमंग आना चाहिए वो नहीं आती है, वो चीज हमारे पास नहीं आ पाती है। हम आगे पता नहीं क्यों हम आगे बढ़ता हुआ हम फील नहीं कर रहे हैं, हमको आगे नहीं लग रहा है कि हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए फिर हमारे अंदर क्या आ जाता है, अलबेलापन, अलवेलापन आना शुरू हो जाता है, आलस आना शुरू हो जाता है। अलवेलापन भी आएगा, आलस भी आएगा, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और जब ये सारी प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम क्या कहेंगे, दीदी जो वो पहले अवस्था थी ना, अभी वो अवस्था नहीं आई है, वो चीज हमारे अंदर अभी नहीं आ पाई है। तो उसके लिए हमें अपना जो भी खाता हम जमा करते हैं, वो सारा का सारा खाता हमारा कैसा हो, गुप्त हो, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाई है, गुप्त पढ़ाई। हमारी पढ़ाई को कोई दुनिया में जानता है कि हम क्या पढ़ते हैं? लोग यही कहते पता नहीं ये ब्रह्मा कुमारियां क्या करती रहती है, क्या पढ़ती रहती है, बस उनको मालूम ही नहीं चलता। तो देखो हमारी पढ़ाई भी गुप्त है, तो हमारा पुरुषार्थ भी क्या है, गुप्त है। बाबा भी अभी क्या, अभी तो गुप्त ही है ना, तो बाबा भी गुप्त है। तो जब सारा कुछ गुप्त है तो हम जो सेवाएं देते हैं तो वो सेवाएं क्यों हम प्रत्यक्ष करना चाहते हैं? बाप को प्रत्यक्ष करने की जगह, बाबा को प्रत्यक्ष करने की जगह हम अपनी सारी सेवाओं को ही गुप्त करना चाहते हैं, तो ये पुरुषार्थ क्या हो गया, हमारा उल्टा पुरुषार्थ हो गया। तो बनने के लिए हम आए थे, भगवान के हम बने क्यों हैं? भगवान के हम बने इसलिए है कि बनने के लिए, क्या बनने के लिए, श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा बनने के लिए हम आए। तो बनते बनते ये बिगड़ने का कार्य शुरू क्यों हो गया? बनते बनते हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ते बढ़ते, तकदीर आगे बढ़ते बढ़ते, तकदीर को लकीर क्यों लगने लगी? कहा जाता है ना कि जैसी मनुष्य की तदबीर होती है वैसी उसकी तकदीर बनती है और जैसी उसकी तकदीर होती है वैसी उसकी तस्वीर उसका भविष्य बन जाता है, वैसी उसकी तस्वीर बन जाती है। तो मैं अपनी तस्वीर को क्या हर वक्त देखती हूँ, क्या देखता हूँ? मेरी तस्वीर क्या है? पुरुषार्थ में बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा कि अपना लक्ष्य हमेशा अपने सामने रखो, मुझे क्या बनना है। जैसे शुरू शुरू में बाबा ने तो फोटो ही खिंचवाया था, हम लोग तो दादी जी से ही सुनते हैं, हम लोगों ने देखा तो नहीं है ना बाबा को, लेकिन हम लोग सुनते हैं दादियों के मुख से, हम सुनते हैं, प्यारी दादियां हमको बताती है कि बाबा पहले बच्चों का फोटो खिंचाते थे, लक्ष्मी नारायण का फोटो खिंचाते थे और एक ब्राह्मण का फोटो खिंचाते थे और फोटो खिंचा करके रखते थे कि दोनों को देखो कि आज मैं क्या हूं और कल क्या बनने वाला हूं। तो दोनों चीजों को सामने रखते थे। तो अभी हम ये काम नहीं करते हैं, रेस में आ जाते, रेस कौन सी रेस, वो भी रीस वाली रेस में आ जाते। तो रीस वाली जब रेस बन जाती है तो आगे बढ़ने की जगह हमारा पुरुषार्थ बैक होने लग जाता है ना, पीछे की ओर चला जाता। तो हमें अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है तो हम यहाँ पर बनने के लिए आए हैं। तो जब बनने के लिए आए हैं तो हमको बिगड़ना तो नहीं है ना। मुझे एक कहानी याद आती है, कहते एक बार एक संत थे, तो संत के पास दो शिष्य थे। वो दोनों शिष्य बहुत ही संत की सेवा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि शिष्यों के मन के अंदर आया कि देखो हम लोग अकेले ही पुरुषार्थ, देखो मूझने का काम शुरू हुआ कि हम लोग अकेले ही संत की सेवा करते, अपने गुरुजी की सेवा करते रहते हैं, काश और भी शिष्य आ जाते होते तो कितना अच्छा होता। और कुछ दिन के बाद उनके पास और भी 50-60 के करीब उनके पास शिष्य आ गए। अब सारे शिष्य मिलकर के सेवा कर रहे थे, लेकिन जो गुरुजी थे तो उनके मन में आया कि जो दो शिष्य मेरे बिल्कुल वफादार हैं, तो ये जो नए आए हैं क्या ये वफादार हैं, इनको जरा ट्राई किया जाए। तो उन्होंने अपने दोनों शिष्यों से कहला दिया कि जाओ उनको जाकर बोलना, रात में जाकर बोलना कि कल सुबह उठते ही आपको गुरुजी सजा देंगे। अभी उनके मन में आया कि मैंने तो कोई गलती किया नहीं तो फिर मुझे गुरुजी सजा क्यों देंगे। और सजा में क्या होगा कि सबको 100-100 कोड़े पड़ेंगे। तो अभी उनके मन में आया कि मैं सजा क्यों खाऊं, मैंने तो कोई गलती की नहीं है। आ जाता है ना कि हमने तो कोई ऐसा गलती किया ही नहीं, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो उनके अंदर भी आ गया मैंने तो कोई गलती किया नहीं है, मैं सजा क्यों खाऊंगा। और सुबह होते होते ही क्या हुआ कि सारे शिष्य भाग गए, चले गए। अब दो फिर बचे, तो उनको भी बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि देखो गुरुजी को क्या पड़ा था, नए नए ये सब आ गए थे, अच्छी सेवाएं हो रही थी, तो कहा चलो ठीक है, अब गुरुजी ने जो किया तो ठीक ही किया होगा। और उसी समय उनको गुरुजी ने बुलाया, कहा वो सारे शिष्य कहाँ है, कहा वो तो भाग गए। कहा चलो ठीक है, तुम दोनों आओ मेरे पास और ये घड़ा उठाओ, घड़ा उठाकर ले जाओ, इसको पानी भर करके मेरे पास ले आओ। दोनों ने घड़ा उठाया और पानी भरने जाते हैं। अब दोनों के अंदर युद्ध चलता है, द्वंद्व चलता है कि देखो फिर हम उसी स्टेज में आ गए, फिर से हमको पानी भरना पड़ रहा है। और उसमें से एक ज्यादा कमजोर था तो उसने कहा मैं आता हूं, वो भी भाग गया, वो भी चला गया। अब एक बच्चा, अब उसके भी मन में आया कि मैं क्यों अकेले जाऊं गुरुजी के पास, अब मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा, वो भी भागने को तैयार हुआ। जैसे भागने को तैयार होता है तो उसी घड़े से फिर एक आवाज आती है, उस घड़े को वहीं पर रख देता है कुएं के पास ही, तो उसी घड़े से आवाज आती है कि बनकर बिगड़ मत। ये उस घड़े से आवाज आ रही है, तो पलट के देखता है कि बनकर बिगड़ मत, तो देखता है कि इस घड़े से आवाज आ रही है। तो उसने कहा तुम क्या कहना चाहते हो, कह मैं यही कहना चाहता हूं कि बनकर बिगड़ मत, यही तेरे जीवन की दास्तान है और यही मेरे जीवन की दास्तान है कि बनकर बिगड़ मत। अभी वो शिष्य उससे घड़े से बोलता है कि तेरे जीवन की दास्तान क्या है, तू अपने जीवन की दास्तान सुना। कह देख, सुन, देख पहले मैं अपनी कहानी सुनाता हूं कि मैं घड़ा हूं ना, मैं पहले घड़ा नहीं था, पहले मैं मिट्टी था, और मुझे मिट्टी के ऊपर कुम्हार की नजर पड़ी। अच्छी मिट्टी देखकर कुम्हार की नजर पड़ी और उस कुम्हार ने मुझे बड़े प्यार से हाथ में उठाया और अपने सिर पर रख लिया और सिर पर रख करके वो लेकर प्यार से आ रहा था। तो मैं बहुत खुश था कि चलो मैं कुम्हार के हाथ में आ गया, अब मैं बन जाऊंगा। लेकिन कुम्हार को चैन नहीं था। कुम्हार ने क्या किया, वो मिट्टी ले जाकर उसने खड़े खड़े ही पटक दिया नीचे। जैसे ही पटका तो उसके मन में आया कि देखो वहां से तो इतने प्यार से ये लेकर आया और इसने मुझे यहां ही पटक दिया, तो अभी चलो ठीक है मैं कुम्हार के हाथ में आया हूं तो मैं अब बनकर बिगड़ना नहीं चाहता। फिर कुम्हार को चैन नहीं था, उसने डंडा उठाया और मिट्टी को पीटना शुरू कर दिया। इतना मिट्टी को पानी डाल डाल करके पीटना शुरू कर दिया। वो पीटता रहा, सहता रहा, पीटता रहा और पीटने के बाद वो एकदम सॉफ्ट हो गया। पीटने के बाद, आपको कहानी क्लियर होती जा रही होगी, तो पीटने के बाद वो एकदम सॉफ्ट हो गई मिट्टी। और जब मिट्टी एकदम सॉफ्ट हुई तो कुम्हार ने जैसा बनाना चाहा, घड़ा बनाना चाहा या कुछ भी बनाना चाहा, उसने जैसे चाक में रखा तो वो घड़ा बन करके तैयार होता है। लेकिन कुम्हार को चैन नहीं है, वो अंदर से हाथ लगाया हुआ है और ऊपर से फिर भी वो मार ही रहा है और अंदर से उसे हाथ लगाया हुआ है। जब वो बनकर तैयार होता है तो फिर कुम्हार को चैन नहीं है। उसने उस घड़े को 3 दिन तक धूप में डाल दिया। कहता जब मैं 3 दिन तक धूप में पड़ा तो मुझे लगा कि अब मैं बनकर के बिगड़ूंगा तो नहीं, क्योंकि मैं बनने आया हूं इसलिए मुझे बिगड़ना नहीं है। तो उसने क्या किया, वो सहता रहा और सहने के बाद जैसे ही वो कुम्हार ने 3 दिन हो गया तो उसने 3 दिन के बाद उसको 3 दिन तक उसने आग में डाल दिया। आग में पकता रहा, जब वो आग से निकाला तो उसको 3 दिन तक उसने फिर छाया में रख दिया। लेकिन जब तक ये कुम्हार क्रिया कर रहा है तब तक वो घड़ा यही सोच रहा है कि मुझे बनकर बिगड़ना नहीं है। तो वो यही सोचता गया और कुम्हार उसे बनाता गया। तो जब वो बनकर तैयार हो गया तो फिर उस कुम्हार ने उस घड़े में कलर करना शुरू कर दिया और आराम से उसको सॉफ्टली उसको उठा करके बड़े प्यार से और उसमें कलर करना शुरू कर दिया। जब उसका कलर हो गया तो उस घड़े की कीमत बढ़ गई, बढ़ गई कीमत। और जब वो घड़े की कीमत बढ़ी तो बाजार में आया, मार्केट में आया। मार्केट से जब लोग उसको लेकर गए कीमत लगाकर और उसे जब पानी को भर दिया तो उस घड़े के अंदर वो पानी गर्म था, लेकिन जब घड़े में गया तो पानी क्या हो गया, ठंडा, शीतल हो गया। और जब वो शीतल घड़ा, वो सुना रहा है कहानी कि जब मैं बिक करके संत के पास आ गया और मुझे दुआएं लेने का वक्त आया, संत पानी पिएगा, शीतल पानी पिएगा और वो दुआएं देगा, तो जब दुआएं लेने का वक्त आ गया तो अब तो मुझे फिर से यही छोड़कर जाता है, अभी कोई राही आएगा, ठोकर मारेगा और मैं फिर से मिट्टी का मिट्टी हो जाऊंगा और वो मिट्टी बनूंगा कि जो दोबारा मैं कुम्हार के हाथ में जा ही नहीं सकता, दोबारा कुम्हार के हाथ में मैं जा ही नहीं सकता, अब मैं घड़ा बन ही नहीं सकता, दुआओं का पात्र बन ही नहीं सकता। इसलिए उठा, उसने उस घड़े को उठाया, कहा यही तेरे जीवन की दास्तान है, जब तुझे दुआएं लेने का वक्त आया तो तू भी छोड़कर जा रहा है, चल। उसने उस घड़े को उठाया और उठा करके पानी भर करके संत के पास गया और उसका पानी पिया। संत ने उस घड़े की तारीफ की, दुआएं मिली। फिर उससे पूछा दूसरा कहां गया, कह दूसरा भी चला गया। कहा ठीक, आज के बाद तू ही पक्का संत है, इस गद्दी को तू ही संभालेगा। और उसे उस गुरु की गद्दी प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से आपने कहानी का आशय समझ लिया होगा। इसी प्रकार से हम सब बाबा के घर में, बाबा क्या है, कुम्हार, और हम सब क्या है, मिट्टी। उस कुम्हार की, उस कारीगर की, उस बाबा की नजर हम मिट्टी पर पड़ी जो किसी काम के नहीं थे, पड़े थे, और उसकी नजर जब पड़ी तो उसने बड़े प्यार से हमें अपना बना लिया। हम बड़े खुश हो गए, हमको भगवान ने अपना बना लिया। और जब बनने का वक्त आया तो इसमें कई प्रकार की बातें आईं सेंटर में आगे बढ़ाने के लिए, सेवाओं का क्षेत्र हमको मिला हा? और उस सेवाओं के क्षेत्र में कई प्रकार की बातें आने लगी। और जब कई प्रकार की बातें आने लगी तो मैं उस कुम्हार को, उस कारीगर को भूल गई कि मैं इस यज्ञ में, हम लोग किस लिए आए हैं, बनने के लिए। तो हर वक्त हम ये सोचे कि मुझे बनकर बिगड़ना नहीं है। जब भी कोई ऐसी समस्या आती है, चाहे यज्ञ की तरफ से भी कभी कभी, हाँ सेंटर की तरफ से भी कभी कभी, हमारी सोच में ऐसा लगने लगता है, या कभी आपसी बातों में आने लग जाता है, या कभी और भी बातें आने लग जाती, तो जब भी कभी ऐसी बातें आती है तो हमेशा याद रखे कि मैं कारीगर के हाथ में हूं, मैं किसी सेंटर या किसी बहन के हाथ में नहीं हूं। किसके हाथ में है? कारीगर बाबा के हाथों में है हम, और बाबा ने हमको बनाने का ही बनाना है, इसलिए बाबा ने मुझे चुना हुआ है। तो जब बाबा ने मुझे चुन लिया है तो मुझे बनकर बिगड़ना नहीं है। हा? तो जब हर वक्त ये सोचेंगे मुझे बनकर बिगड़ना नहीं है, तो धीरे 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 हमारा जीवन क्या बन जाएगा, कीमती जीवन। और कीमती जीवन भी कैसा, डायमंड, वो तो केवल घड़े की कीमत थी, लेकिन ये क्या, कैसा जीवन बन जाता हमारा, डायमंड, कीमती जीवन। और जैसे हमारा कीमती जीवन बनता है तो हमें दुआएं मांगनी नहीं पड़ती किसी से, फिर अपने आप ही दुआएं मिलने लग जाती। और इसीलिए कहा जाता कि मिट्टी कहे कुम्हार से, तू रौंदत है मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय। तो ये जीवन हमारा क्या है, घड़ा ही है, तो इस घड़े को हमें संभालना है, जीवन रूपी घड़े को हमें संभालना है। तो ऐसा अपने आप को देखना है कि क्योंकि घड़ा भी जब चटक जाता है ना, तो चटका हुआ घड़ा कभी भी सागर में डूब नहीं सकता। और चटका गागर किसको कहते, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, मान, शान, ये सब घड़े को क्या करते, चटका देते हैं। और जब ऐसी बुद्धि बन जाती है तो बाबा से बुद्धि का योग जुड़ता होगा, लगता होगा, फिर बाबा से हमारा बुद्धि का योग नहीं लग सकता। फिर हम ये कहने लगते पता नहीं क्या हो गया है, हम बाबा को याद करने बैठते बुद्धि नहीं लगती है, हमारा योग ही नहीं लगता है, मन भटक जाता है। हाँ, वही सारी बातें, नए नए की जो बातें होती वो पुराने में भी वही सारी बातें आ जाती कि हमारा योग नहीं लगता। तो योग क्यों नहीं लगता, क्योंकि चटका हुआ घड़ा है, और उस चटके हुए घड़े में कभी शीतल जल नहीं हो सकता, ना कभी वो दुआओं का पात्र बन सकता, बल्कि उस घड़े में क्या भर जाता, क्या भर देते लोग, राख भर देते, कोयला भर देते, हाँ ये सब भर देते। तो हमारे बुद्धि के अंदर भी मन मत पर मत ये सारी बातें भर जाती। जब योग नहीं लगता, मूझने वाली स्थिति बन जाती, तो योग ना लगने के कारण, मूझने वाली स्थिति के कारण ये सारा कोयला, ये राख भर जाती है। तो हमें अपने जीवन को, ब्राह्मण जीवन को आगे बढ़ाना है, हाँ आगे बढ़ते जाना है। तो आगे जीवन को बढ़ाने के लिए हमें मूझना नहीं है, और हर वक्त ये सोचना है कि मुझे बनकर बिगड़ना नहीं है, क्योंकि बाबा ने, हमारा जीवन बहुत ही कीमती जीवन है, हमारा कोई साधारण जीवन नहीं है। और अगर अभी हम बिगड़ गए, जैसे उसने कहा था ना कि अगर मैं अभी ठोकर मुझे लग गई तो फिर मेरा जीवन क्या हो जाएगा, कि मैं कभी भी घड़ा नहीं बन सकता, मेरे ऊपर कभी भी कुम्हार की नजर नहीं पड़ सकती। तो अगर एक बार बनते बनते अगर ये जीवन बिगड़ने के रास्ते पर चला जाता है, तो फिर कुम्हार की नजर भी भगवान के सामने है। कई बार बाबा ने ये बात कहा है कि अगर हमारे अंदर वो सारी चीजें नहीं रहती है, हा? तो भले आप मेरे सन्मुख बैठे हो, लेकिन सन्मुख होते हुए भी भगवान की नजर उन बच्चों पर नहीं पड़ती है, जाती नहीं। और सोच के देखो कि हम भगवान के बने हैं और भगवान की नजर से निहाल होने की जगह पर भगवान हमारे तरफ देख ही नहीं रहा, देखते हुए भी हमारे पर उसकी नजर नहीं पड़ रही है। तो ये समय हमारे हाथ से जा रहा है, ये बनने का समय है। कुमार के हाथ में हम आ चुके हैं, ये बनने का समय है। इसलिए एक बार अगर हम गिर गए तो फिर ये कल्प कल्पांतर की बाजी हमारे हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि आपको पता हो कि ये संगम युगी जीवन 21 जन्म में जो जीवन की बात चल रही है कि 21 जन्म सतयुग में होते हैं, तो एक जन्म की शुरुआत कहां से होती है? संगम से। जो पहले जन्म की शुरुआत होती है वो संगम युग से ही होती है। तो ये 21वें जन्म में संगम युग का एक जन्म बाबा के साथ हमारा जुड़ा हुआ एक जन्म, और इसी एक जन्म में मुझे 21 जन्म के संस्कार, देव आत्माओं के संस्कारों को डेवलप करना है। 21 जन्म, और न सिर्फ 21 जन्म बल्कि पूरे ही हमें 84 जन्मों की प्रारब्ध को बनाना है। 84 जन्मों की प्रारब्ध, तो 84 जन्मों का वेश कहां से शुरू होता है? इसी संगम से। तो हमें संगम युग में अपने संस्कारों को श्रेष्ठ संस्कार बनाने हैं, ये अंदर से लक्ष्य हो। पुरुषार्थ में हमारा ये अटेंशन हो। पुरुषार्थ क्या है? केवल मुरली सुनना नहीं होता है। क्या हम योग लगाते हैं, हम मुरली सुनते हैं, हम सेंटर में जाते हैं, ये हमारा पुरुषार्थ है, नेमी नाथ है। नेमी नाथ बन करके हमें केवल इसको फॉलो नहीं करना है बल्कि प्रेमी नाथ, और प्रेमी नाथ मतलब पुरुषार्थ से प्यार। प्रेमी नाथ माना पुरुषार्थ से प्यार, और कौन सा पुरुषार्थ? कौन सा पुरुषार्थ? देव आत्मा। तो देव आत्मा के संस्कार माना बैटरी फुल, फुल चार्ज, फुल चार्ज। देव आत्मा क्या थे? फुल चार्ज थे, तो इसलिए वो देव आत्मा। अभी आत्मा रूपी बैटरी क्या हो गई? डिस्चार्ज। हाँ, तो डिस्चार्ज बैटरी को अभी क्या करना है? चार्ज करना है। तो चार्जिंग होती रहे। चार्जिंग दो प्रकार से होती है, या तो हम कनेक्शन जोड़ ले तो चार्जिंग होती रहेगी, या फिर गाड़ी चलती रहे तो बैटरी चार्ज होती रहेगी। तो या तो हमारा बाबा के साथ अंदर गहरा प्यार, हम जुड़े रहें अंदर से गहरा प्यार, तो हम बाबा के साथ जुड़े रहें, चार्जिंग होती रहेगी। हाँ, लेकिन जुड़े तभी रहेंगे। कब? जब बनकर बिगड़ मत, चार्जिंग होती रहेगी, मौज, मूझना नहीं, मौज। तो चार्जिंग होती रहेगी, या फिर गाड़ी चलती रहे तो गाड़ी क्या माना? सेवाएं। श्री मत के आधार पर हमारी सेवाएं चलती रहे। हाँ, तो जब सेवाएं हमारी चलती रहती है, चाहे तन के द्वारा, मन धन मनसा वाचा कोई भी प्रकार की सेवाएं हमारी चलती रहे, तो सेवाएं अगर हम करते रहेंगे, चाहे स्थूल सेवा हमको मिलती है तो स्थूल सेवा भी हम करते रहते हैं, तो जो भी सेवाएं हम करते रहते हैं तो बैटरी हमारी क्या होती रहती है? चार्ज होती रहती है। ठीक है, तो जब बैटरी चार्ज होती रहेगी तो जो मेरा लक्ष्य है ना, जो ऑब्जेक्ट है, क्या? देव आत्मा बनेंगे या नहीं? निश्चित बन जाएंगे। हाँ, निश्चित बन जाएंगे। तो हर वक्त हमें बाबा को याद रखना है, और बाबा को याद रखते रखते हमें चार्ज होते रहना है, और जितना जितना हम चार्ज होते जाएंगे तो दुआओं का पात्र अपने आप बनते जाएंगे। दुआएं हमको मांगनी नहीं पड़ेगी, किसी से कहना नहीं पड़ेगा हमको, बल्कि ऑटोमेटिक। क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज है कि जो हमें और सारा कुछ, आप धन है, आप करेंगे तो मिलेगा, करेंगे तो मिलेगा धन, लेकिन दुआओं रूपी धन जो हमें मिलता है ये सूक्ष्म है। ये स्थूल नहीं है, ये सूक्ष्म है, दुआएं सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म स्थिति से जितना जितना अपने मन को हम क्लियर करते चलते हैं, जितना इन सब बाहरी बातों से अपने आप को पूरा करते चलते हैं, जितना हटाते चलते हैं, तो हमारा बुद्धियोग क्लियर होता जाता है। और बुद्धियोग क्लियर होने के कारण से सूक्ष्म दुआओं का खजाना हमारे झोली में आता जाता। तो ये संगम युग ही एक ऐसा युग है जो कमाने का युग है। सतयुग त्रेता में हम कमाते नहीं, खाते हैं। द्वापर में कमाते और खाते हैं। कलयुग में कमाते कम, खाते ज्यादा हैं। संगम में कमाते कमाते क्या लक्षण है कि हमको संगम में केवल कमाते रहना है, दुआओं का खजाना हमको भरपूर रखना, क्योंकि यही दुआएं आने वाले समय पर, आपको और कोई काम कुछ नहीं आएगा, लेकिन अंत के समय पर, आने वाले समय पर हमारी ये दुआएं ही हमारा साथ देगी और कुछ भी नहीं। तो हमें चेक करना है कि हमने कितनी दुआएं इकट्ठी की, हमारे किसी भी एक्टिविटी से, किसी भी कर्म के द्वारा, किसी भी आत्मा को के द्वारा हमें कहीं बददुआएं तो नहीं मिलती है। अटेंशन, मैं अच्छा कर्म करूं तो अच्छा कर्म करते करते कभी कभी इसमें ट्रिपिकल चीजें आ जाती है कि हम अच्छा करते हैं लेकिन दूसरा व्यक्ति उस अच्छाई को न समझने के कारण से वो हमें बददुआएं देने का काम शुरू कर देता है। तो हम यहां मुंह जाते हैं कि हम तो इसके साथ अच्छा कर रहे हैं लेकिन ये गलत सोच करके ये हमारे साथ गलत व्यवहार कर देता, मना बददुआएं दे रहा है। लेकिन बाबा की बात हमेशा आप याद रखेंगे कि यदि हम कायदे में हैं, भगवान कल्याणकारी है, कल्याणकारी युग है और आपके अंदर कल्याण की भावना है तो हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता। और अगर हो रहा होगा तो मैं कल्याणकारी बाप आपका अकल्याण होने नहीं दूंगा। ये भगवान का वायदा है, ये भगवान की प्रॉमिस है। तो हमें अपने अंदर केवल कल्याण की भावना, तो जितना जितना हम कल्याण की भावना अपने अंदर रखते चलते हैं उतना उतना ही हमारी स्थिति क्या होती जाती है, अच्छी बनती जाती। तो केवल स्थिति का आधार स्मृति है और उसी स्मृति को हर वक्त हमें याद रखना है और उसी स्मृति को हाथ याद रखते हुए अपनी स्थिति को अच्छा हमको बनाते चलना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है। क्योंकि पुरुषार्थ अब नहीं करना है बल्कि अभी हमको तीव्र पुरुषार्थी बनना है, ठीक है। तीव्र पुरुषार्थी के लिए अपने ऊपर फुल अटेंशन, हा? कहते ना कि अगर अटेंशन रूपी पहरेदार अगर सतर्क है तो चोरी हो नहीं सकती, क्योंकि हमारे साथ चोरी करने वाली भी कोई बैठी है ना। चोरी करने वाली कौन, जिसको हम लोग कहते हैं माया, हा? लेकिन माया कोई बला नहीं है, माया हमारी स्वयं की कमजोरी का नाम ही माया, कोई बला नहीं है। वो तो हम एक अपने पुरुषार्थ को बचाने के लिए या अपनी कमी कमजोरी को छिपाने के लिए बोल देते क्या करे बहन जी माया आ गई है, जबकि माया कोई भला नहीं होती है, माया कोई चीज नहीं होती है। तो हम अपनी कमजोरी को समझें क्योंकि हमसे ज्यादा हमारी कमजोरी को कोई दूसरा समझ नहीं सकता। समझ सकता है क्या? कोई दूसरा नहीं समझ सकता। तो हम अपनी कमजोरी को देखते हुए, समझते हुए और उस कमजोरी को खत्म करते हुए, अटेंशन दे करके उसको खत्म करते चलेंगे तो निश्चित है कि हमारा पुरुषार्थ अच्छा ही होता जाएगा। ओम शांति।
Oh, को हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला।